भ्यः ॐ नमः सिद्धेभ्यः ॐ नमः सिद्धेभ्यः मङ्गलम् भगवान् वीरो मङ्गलम् गौतमो गणी मङ्गलम् कुन्दकुन्दार्यो जीवधर्मोऽस्तु मङ्गलम् सर्वमङ्गलमाङ्गल्यम् सर्वकल्याणकारकम् प्रधानम् सर्वधर्माणाम् जीवम् जयतु शासनम् जैनम् जयतु शासनम् पञ्चपरमेष्ठी भगवान् की जय। अहिंसा परमो धर्म की जय। आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर मुनि महाराज की जय।
परम पूज्य ज्ञान सागर महाराज की जय। मुनि संघ की जय।
संसारी जीव संसार में रहते हुए जो यह यात्रा करता हुआ आगे बढ़ रहा है, इसके पास तीन उपयोगों में से तीन कौन कौन? अशुभोपयोग, शुभोपयोग और शुद्धोपयोग। तीन उपयोगों में से प्रथम नंबर के उपयोग को अनादिकाल से धारण कर रहा है। अशुभोपयोग हमारे साथ कहां किस पर्याय में नहीं रहा है, किस गति में नहीं रहा है, सब गतियों में अनेकों बार अनंतों बार जन्म मरण हो चुका है, परंतु अशुभोपयोग हमसे नहीं छूटा। अशुभोपयोग सदा जीव का साथी है। इसके माध्यम से जीवात्मा का न कभी कल्याण हो सकता है, न होगा, न इतिहास में कभी कल्याण इससे हुआ था। इसी उपयोग को भव्य जीवात्मा त्याग करे और शुभोपयोग को भजते हुए शुद्धोपयोग को प्राप्त करे और शुद्धोपयोग को प्राप्त करके केवल ज्ञानोपयोग को हासिल करे। यह उपदेश सारे 24 तीर्थंकरों ने दिया था, वही उपदेश परंपरा आचार्य परमिष्टियों के माध्यम से, उनकी जिनवाणी साहित्य के माध्यम से हम तक यहां तक आया हुआ है। उसी की चर्चा हम जब करते हैं तो ऐसा लगता है कि इस जीवात्मा ने बहुत बड़ी भूल की है, खुद के उपयोग को खुद ही न समझते हुए खुद ही संसार के दुखों को भोग रहा है, भोगता हुआ भटक रहा है और इसे अपने आत्मा के स्वभाव का भान नहीं है। इस जीव को यही ज्ञात नहीं है कि मैं उपयोगमय हूं, और वह उपयोग कितने प्रकार का हो सकता है इसका परिज्ञान नहीं है, इसका परिचय नहीं है। इसी के फलस्वरूप वह खुद के उपयोग को खुद ही न जानता हुआ खुद के उपयोग का दुरुपयोग करते हुए दर दर भटक रहा है संसार में। उपयोग का अनादिकाल से सदुपयोग हुआ है क्या दुरुपयोग? दुरुपयोग ही हुआ है। और जिनवाणी का ज्ञान न होने से दुरुपयोग हुआ है। अगर जिनवाणी के प्रति सच्ची श्रद्धा, आस्था, अध्ययन, मनन, चिंतन और उसके अनुरूप थोड़ा भी श्रद्धान करके आगे बढ़ने का प्रयास करता, संसार के विषय भोगों से विरक्त होने का प्रयत्न करता, तो निश्चित रूप से यह आत्मा कभी किसी भव में संख्यात असंख्यात भव पहले ही मोक्ष प्राप्त कर गया होता, किंतु ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। कुछ भी नहीं हुआ है यही हमारे लिए साक्षी है, यही हमारे लिए प्रत्यक्ष प्रमाण है कि इस जीवात्मा ने अपने उपयोग का दुरुपयोग ही किया है, लेकिन सदुपयोग करने का प्रयास नहीं किया। तीर्थंकर भगवंतों का कहना है कि अशुभोपयोग चतुर्गति में भ्रमण करने कराने का कारण बनता है। वह चतुर्गति के दुखों को भोगने के लिए आवश्यक है, पर आत्मा के सुखों को भोगना हो, परमार्थ के सुख को प्राप्त करना हो, आत्मा में आनंद लेना हो, अद्भुत आनंद, जो संसार में कोई भी अनंत आनंद संसारी प्राणी भोग नहीं सकता, ऐसा आनंद यदि हमें लेना है तो कितने उपयोगों की शरण हम लें? दो उपयोगों की शरण में हम जाएं, उन दोनों उपयोगों की हम आराधना करें, उनको भजे, उनके माध्यम से कर्मों से मुक्त होकर परमात्मा बने, और परमात्मा बनने के लिए हमको दो प्रकार के उपयोगों का उपदेश भगवान ने दिया है। उस तीन में से एक को त्याग करने को बताया और एक को, दो को ग्रहण करने को बताया। दो उपाधेय हैं और एक हेय है, और इन तीन उपयोगों में से प्रत्येक उपयोग की विशेष बात यह है कि जिस समय जो उपयोग जिस गुणस्थान में होता है उस समय वह उपयोग वही रहता है, दूसरा उपयोग उसके साथ नहीं रहता। एक साथ दो उपयोगों का रहना न्याय से बाधा आती है। जब जब अशुभोपयोग रहेगा, अशुभोपयोग अकेला रहेगा, जब जब शुभोपयोग रहेगा तब तब अकेला शुभोपयोग रहेगा, जब जब शुद्धोपयोग रहेगा तब तब शुद्धोपयोग अकेला रहेगा, पर एक उपयोग दूसरे उपयोग को ग्रहण नहीं करता, उसके साथ दूसरा उपयोग रह नहीं सकता, क्योंकि ये प्रकृति नियम है, ये निसर्ग नियम है कि एक अवस्था में जैसे हम दो विचार नहीं कर सकते, कर सकते? शुभोपयोग का भी चिंतन करो और शुद्धोपयोग का भी चिंतन करो, दो चिंतन एक साथ करो, ये होता है। तो यही तो उपयोग है, हमारा ज्ञानोपयोग एक समय में एक ही काम करेगा, या तो अशुभ का काम करेगा, या तो शुभ का काम करेगा, या तो शुद्ध का काम करेगा। एक समय में एक ही साथ आप जैसे दो विचार नहीं कर सकते, एक ही साथ एक ही समय में आप काया से भी दो काम नहीं कर सकते। काया से, क्रिया से दो काम नहीं कर सकते। दो काम करो, ये दो हाथ ले लो, एक को इधर घुमाओ और एक को इधर घुमाओ, करके बताओ। इसी से सिद्ध होता है योग के माध्यम से भी, ये तो योग है, काय योग है और अंदर मनोयोग है, और जो बोल रहे हैं वो वचन योग है। ये योग भी एक समय में दो काम नहीं कर सकता, क्योंकि योग के माध्यम से ही उपयोग प्रवाहित होता है। जैसे पाइप के माध्यम से जल प्रवाहित होकर के उधर गिरता है, उसी प्रकार उपयोग की धारा तीन योगों से, तीन पाइप हैं ये योग के, पाइप योग है और उसके बहने वाली जल की धारा वह उपयोग है। जब हम काया के द्वारा जिसके माध्यम से उपयोग को प्रवाहित कर रहे हैं, वो काया के द्वारा प्रवाहित हो रही है, लेकिन काया के भीतर के उपयोग को दो तरह से आप प्रयोग करना चाहो तो संभव नहीं। जो जलधारा प्रवाहित है उसको पीछे भी प्रवाहित करो और आगे भी प्रवाहित करो, एक साथ नहीं हो सकता। मैं काया के माध्यम से अपने ज्ञान का, ज्ञानोपयोग का उपयोग करता हुआ इन हाथों को, इस काय को आदेश दे रहा हूं, तुम इधर घूमना और तुम इधर घूमना, करके बताओ। संभव नहीं है, क्योंकि ये उल्टा प्रवाह है और ये सीधा प्रवाह है, दोनों एक साथ नहीं हो सकते। ये तो पाइप के माध्यम से बहने वाला पानी भी पीछे भी जा रहा हो और आगे भी बढ़ रहा हो, एक साथ नहीं होता। इस उपयोग को समझने की बहुत आवश्यकता है। इन उपयोगों को भगवान ने गुण स्थानों में व्यवस्थित करके उपदेश दिया है। गुण स्थानों की अपेक्षा से उन्होंने कहा कि अशुभोपयोग जो होता है वह सर्वथा भौतिक आस्था वाला होता है, भौतिक सांसारिक विषय कषायों में रमने वाला उपयोग होता है। विषय कषायों में रमने वाले उपयोग को अशुभोपयोग, और ऐसा रमन करता हुआ वह उपयोग जो निज आत्मा के स्वभाव को भूल जाता है, स्व और पराया के भेद विज्ञान को भूल जाता है, स्व को न जानने वाला हुआ उपयोग केवल एकमात्र उस सुख की, जो सुख भौतिक है, शारीरिक है, इंद्रिय संबंधित है, उस सुख को पाने में जब यह प्रवृत्त होता है तो वह आत्मा के सुख को पाने में प्रवृत्त नहीं रहता, आत्मरुचि वाला नहीं रहता, आत्म सुख के प्राप्ति के ध्येय वाला नहीं रहता। आत्म सुख की प्राप्ति का ध्येय उसमें, उस उपयोग में नहीं रहता, ये कब तक नहीं रहता? जब तक कि आत्मा क्या है इसको पता नहीं लगाता तब तक। ये पता लगाने वाला कौन? उपयोग ही पता लगाएगा। कौन सा उपयोग पता लगाएगा? ज्ञानोपयोग ही पता लगाएगा। परंतु ज्ञानोपयोग यही सांसारिक विषय कषाय को ही ध्येय मानकर एकमात्र केवल उसी को प्राप्त करने की जब चेष्टा करता रहता है तब वह आत्मरुचि वाला नहीं कहलाता। वह अशुभोपयोग स्वयं को नहीं जानता, पर को जानता हुआ पर को ही ध्येय बनाकर, पर को ही सुख का कारण समझकर उसी में प्रवाहित होता हुआ आगे बढ़ता रहता है। और ऐसे आगे बढ़ते बढ़ते आत्मा को भूलकर यात्रा करता हुआ कितना काल व्यतीत हुआ? अनंत काल व्यतीत हुआ है। ये लौट के नहीं आया, अपने आप को समझ नहीं पाया। हम सबको क्या करना है? कुछ नहीं करना है, अपने ज्ञानोपयोग को समझ करके वह कहां पर कार्यशील हो रहा है, कहां पर ये अपनी गतिविधियों को कहां बनाए रखा है, इसको समझना है। इसकी गतिविधि निरंतर अनादिकाल से तो सांसारिक सुख के पीछे रही है, अब आत्म सुख के प्रति, सुख के पीछे लगाना चाहे तो लग भी सकता है, नहीं लगाना चाहे उसको फ्री ऐसा ही छोड़ दो, स्वच्छंद छोड़ दो। तो अनादिकाल का संस्कार तो वैसे ही है। कौन सा सुख मांगना? भौतिक सुख मांगना। और भौतिक सुख मांगता मांगता यह कभी विराम ले सकता है क्या? ऐसे ही छोड़ेंगे तो नहीं ले सकता। तो इतना सा उपदेश भगवान के माध्यम से या गुरु के माध्यम से या जिनवानी के स्वाध्याय के वजह से हमारे लिए प्राप्त अगर हो गया तो फिर जीव एक क्षण तटस्थ होकर विचार कर सकता है, एक क्षण यात्रा को रोककर विचार करके वह लौटने की संभावना अपने आप में निर्मित कर सकता है। और यह अगर हो गया तो सम्यक दर्शन की भूमिका, शुभोपयोग की भूमिका पहले गुणस्थान में निर्मित होना प्रारंभ हो जाता है। शुभोपयोग की भूमिका को लब्धि कहा है। पांच लब्धियां हैं जो शुभोपयोग तक पहुंचाने के कार्य करते हैं, पहुंचाने का कार्य करते हैं ये पांच लब्धियां। पहली लब्धि का नाम है क्षायोपशमिक लब्धि, दूसरी लब्धि का नाम है विशुद्धि लब्धि, तीसरी का नाम है देशना लब्धि, चौथी का नाम है प्रायोग्य लब्धि और पांचवी का नाम है करण लब्धि। इनका स्वरूप समझना बहुत आवश्यक है, बहुत आवश्यक है। जिनेंद्र भगवान की देशना है, जिनेंद्र भगवान का कहना है, भगवान कहते हैं कि चार लब्धि प्रथम के, आदि के चार लब्धियों को तो चाहे भव्य जीव हो चाहे अभव्य जीव हो, अभव्य जीव तो कभी मोक्ष नहीं जाता, लेकिन शुभोपयोग की जो चार भूमिका चार लब्धियां हैं उनमें वह पहुंच सकता है। ये भूमिका है, ये शुभोपयोग नहीं। लब्धि में पहुंचा हुआ जीव परिणामों से विशुद्ध परिणाम वाला, विशुद्धि को धारण करने वाला अवश्य कहलाता है, परंतु उस विशुद्धि को शुभोपयोग नहीं कहेंगे। उस विशुद्धि को, उस शुभ लेशा को, उस मंद कषाय को शुभोपयोग नहीं कहेंगे, क्योंकि पहला गुणस्थान वाला है। और एक ही गुणस्थान में दो उपयोग एक जीव के साथ, एक जीव में, एक आत्मा में हो, यह संभव नहीं है। तो यहां पर हमको यह ध्यान में रखना पड़ेगा कि विशुद्धि अलग बात है और शुभोपयोग अलग बात है। जहां जहां शुभोपयोग है वहां वहां विशुद्धि है, लेकिन जहां जहां विशुद्धि है वहां शुभोपयोग हो यह नियम नहीं बनता। ये न्याय वचन हमारे लिए पता हो तो हम सही ढंग से आगे समीचीन ढंग से विचारधारा को ऊपर ले जा सकते हैं, अन्यथा विशुद्धि अलग है और शुभोपयोग अलग है ये पता नहीं रहेगा तो हम आगे नहीं बढ़ सकेंगे, उलझ जाएंगे। अरे पर प्रथम गुण स्थान में तो लब्धियों के काल में मंद कषाय है, शुभ लेशा है, उसके साथ विशुद्धि भी है, तो ये विशुद्धि ही तो शुभोपयोग है, ऐसा कहेंगे तो नहीं चलने वाला। क्योंकि अशुभोपयोग के साथ भी अनंतानुबंधी कषाय का मंदोदय जब रहता है लेशा शुभ हो जाती है, और उस शुभ लेशा के काल में विशुद्धि हमारी बढ़ भी सकती है और घट भी सकती है। लेशा अलग है और विशुद्धि अलग है। लेशा उसका नाम है जो कषाय की तीव्रता है, उस तीव्रता की अवस्था से मंदता की ओर उसको नीचे ले आना, इसका नाम शुभ लेशा है। और इस शुभ लेशा के उपरांत जीव जो अपने पुरुषार्थ पूर्वक पुरुषार्थ के बल पर वह अपने परिणामों को विशुद्ध करने लगता है, परिणामों को निर्मल बनाने का पुरुषार्थ करने लगता है, वो परिणामों की निर्मलता का पुरुषार्थ वो विशुद्धि कहलाती है। और यह निर्मल करने का पुरुषार्थ किस गुणस्थान से किस गुणस्थान तक चलता है, विशुद्धि बढ़ाने का काम इन तीनों उपयोगों में चलता रहता है। अशुभोपयोग में भी विशुद्धि को बढ़ाता बढ़ाता पांच लब्धियों को पार करके शुभोपयोग में पहुंच जाता है, तो अशुभोपयोग का अभाव होता है, शुभोपयोग में पहुंच जाता है। जिस क्षण वह शुभोपयोग में पहुंचता है उसी क्षण उसका अविनाभावी सम्यक दर्शन भी प्राप्त हो जाता है। शुभोपयोग का अविनाभावी सम्यक दर्शन है और सम्यक दर्शन का अविनाभावी शुभोपयोग है। यानी जहां जहां शुभोपयोग होता है वहां वहां सम्यक दर्शन रहता है, और जहां जहां सम्यक दर्शन रहता है वहां वहां शुभोपयोग भी अवश्य रहता है। जिस प्रकार अशुभोपयोग का संबंध मिथ्यात्व के साथ संबंध है, अविनाभाव संबंध, जहां जहां जीव को सम्यक दर्शन नहीं वहां वहां जीव को हम सम्यक तो रहित ही कहेंगे ना। जहां जहां सम्यक दर्शन नहीं जीव को, ऐसे गुणस्थान कितने हैं उसके? तीन गुणस्थान हैं, प्रथम गुणस्थान, द्वितीय गुणस्थान और तृतीय गुणस्थान। ये तीन गुणस्थान हैं, तो इन तीनों गुणस्थानों में सम्यक तो न होने के कारण सम्यक्तु का अविनाभावी शुभोपयोग नहीं है। सम्यक्तु का अविनाभावी शुभोपयोग यहां नहीं है अशुभोपयोग के साथ, तो तीन गुण स्थानों में शुभोपयोग नहीं है। क्यों नहीं है? उसका अविनाभावी सम्यक दर्शन नीचे नहीं है, इसलिए उसका अविनाभावी सम्यक दर्शन पहले में नहीं, दूसरे में नहीं, तीसरे में नहीं, इसलिए इस अशुभोपयोग को सम्यक तो रहित कहा है। तो सम्यक तो रहित कहा है तो मिथ्या तो सहित अपने आप हो जाता है, क्या उसको कहना पड़ता है? सम्यक तो ये जीव सम्यक दर्शन से रहित नहीं है, इसका मतलब मिथ्या तो से सहित है। तो ये न्याय घटित होता है। इन उपयोगों की चर्चा करते समय न्याय का आलंबन लेकर के हम यदि चर्चा करते हुए, चिंतन करते हुए आगे बढ़ेंगे तो कहीं भी कोई दिक्कत नहीं आती। जिनेंद्र भगवान ने जैसा वस्तु स्वरूप का व्याख्यान किया है वो व्याख्यायित विषय ऑटोमेटिक हमारे लिए सरल बनता जाता है। हमारे पास जो प्रश्न होते हैं हजारों, उनका निरसन मिलता जाता है। हमारे चिंतन के द्वारा हमको ही शंकाओं का समाधान मिलता जाता है, परंतु न्याय का आलंबन लेना पड़ेगा। न्याय भी एक ऐसा ग्रंथ या विषय कहलाता है, न्याय शास्त्र भी एक ऐसे शास्त्र कहलाते हैं जिनको आगम की कोटि में रखा है, क्योंकि हमारा ज्ञानोपयोग जिस विषय के बारे में चिंतनशील है वह चिंतन हमारा ठीक है या नहीं, इसको कसौटी पर कस करके हां ये ठीक है, हां ये ठीक नहीं था, इस प्रकार जजमेंट देने का साधन कौन है? न्याय है। तो न्याय की कसौटी पर हमारी चिंतन धारा को रख करके हमें आगे बढ़ना होगा। तो न्याय सिद्धांत एक ऐसा सिद्धांत है, न्याय आगम एक ऐसा आगम है जो हमारे ज्ञान को शोधन करता है। हमारे ज्ञान में जो विकार है या हमारा ज्ञान में जो दोष है उस दोष को दूर करता हुआ उपयोग को प्रवाहित रूप से आगे बढ़ा देता है। न्याय बड़ा आलंबन देता है हमें, उस न्याय के माध्यम से धीरे धीरे सावधानी के साथ वस्तु स्वरूप का विचार हम करते करते आगे बढ़ेंगे तो हमारे लिए शंकाओं का निरसन स्वतः होता जाएगा और हमारे उपयोग में से जो उल्टा सीधा कोई चिंतन हुआ हो, उल्टी सीधी कोई धारणा बनी हो, तो उस धारणा को, उस चिंतन को, उस चिंतन में आए हुए दोषों को, उस धारणागत दोषों को परिशोधित करता हुआ यह न्याय हमारे लिए उपयोग ऊपर उठाता हुआ आगे के गुण स्थानों में पहुंचा देता है। जब तक ज्ञान प्रामाणिक नहीं बनेगा, हमारा ज्ञानोपयोग प्रामाणिक नहीं बनेगा, तब तक वह ऊपर के गुण स्थानों को प्राप्त नहीं कर सकेगा। क्या प्राप्त कर सकेगा? हम अपने ज्ञान को तो शोधना नहीं चाहते और ऐसा ही बनाए रखना चाहते हैं, बस जितना समझ में आया है उतना ही ठीक है, आगे विचार करने की जरूरत नहीं है, तो उपयोग कुंठित हो जाएगा, तटस्थ हो जाएगा और यहीं रह जाएगा। चिंतन तो करना ही पड़ेगा, जब तक केवल ज्ञान प्राप्त नहीं होता तब तक हमें चिंतनशील रहना पड़ता है, क्योंकि तब तक हमारा ज्ञानोपयोग क्षायोपशमिक ज्ञानोपयोग रहता है, क्षायिक ज्ञानोपयोग नहीं रहता। क्षायिक ज्ञानोपयोग किसका नाम? केवल ज्ञान का नाम है। और क्षायोपशमिक ज्ञानोपयोग किसका नाम? जो छद्मस्थ जीव के पास है ज्ञान वर्तमान में, उसको क्षायोपशमिक कहा है। तो इसी क्षायोपशमिक ज्ञान के उपयोग को ज्ञानोपयोग कहा है और भगवान ने इसको तीन रूप में व्याख्यायित किया है। ये छद्मस्थ का ज्ञान और उस ज्ञान का उपयोग तीन प्रकार का, यह ज्ञानोपयोग तीन प्रकार का है। चिंतन कौन करता है ये सबको मालूम है, श्रुत ज्ञान करता है कि मति ज्ञान करता है कि अवधि ज्ञान करता है कि मनःपरि ज्ञान करता है, क्योंकि ये चारों ज्ञान क्षायोपशमिक है। इसमें से चिंतक कौन है? श्रुत ज्ञान है। तो केवल ज्ञान की उत्पत्ति में काम आने वाला, सबसे सहयोग देने वाला ज्ञान कौन है? श्रुत ज्ञान। और हमारा श्रुत ज्ञानोपयोग अगर भटक गया तो सारा गड़बड़ हो जाएगा, हमको उन्मार्ग पर पहुंचा देगा। ये श्रुत ज्ञानोपयोग ही ऐसा ज्ञानोपयोग है जो हमें उन्मार्ग पर भी पहुंचा सकता है और सन्मार्ग पर भी पहुंचा सकता है। यह हमें संसारी आत्मा भी बना सकता है और परमात्मा भी बना सकता है। तो परमात्मा बनाने की क्षमता श्रुत ज्ञानोपयोग के भीतर है, तो यह श्रुत ज्ञानोपयोग बड़ा चिंतनीय है, बड़ा ही विचार करने योग्य है, बड़ा ही सावधान रहने के लायक है, और इसी पर हमारी दृष्टि सदा रहना चाहिए। श्रुत ज्ञानोपयोग पर हमारी दृष्टि रहना चाहिए। मति ज्ञानोपयोग भी ज्ञानोपयोग है, लेकिन उसका काम कुछ ज्यादा नहीं है, वो तो केवल एक हार्डिक्स की भांति काम करता है, एक मेमोरी कार्ड की भांति काम करता रहता है, जो आप दे दो उसको लेके रखता है। श्रुत ज्ञानोपयोग जो चिंतन करके देगा, जो धारणा बना करके, जो विचार करके देगा, वह धारणा बना लेता है। श्रुत ज्ञान न मति ज्ञान, धारणा मति ज्ञान, वह स्वीकार करता है, चार्ज कर लेता है, वो तो मेमोरी कार्ड के भांति है। उसमें श्रुत ज्ञान ने जो कुछ भी चिंतन करके दे दिया, श्रुत ज्ञान ने ऑर्डर दे दिया, इसको याद रखना है, तो मति ज्ञान कहता है ठीक है, मैं याद ना रखने का ही केवल काम करता हूं, मुझसे चिंतन नहीं होता, याद तो खूब रख लेता हूं पर चिंतन नहीं होता। जस्ट लाइक ये मति ज्ञान वैसा ही है जैसा आपका मेमोरी कार्ड है मोबाइल में, या हार्डिक्स है कंप्यूटर में। हार्डिक्स क्या काम करता है? रखने का काम करता है। उस हार्डिक्स को आप बता दो, जरा चिंतन करके भी बताओ, वो रखते ही जाते हो, केवल उसका विश्लेषण करके भी बताया करो, केवल पास रखते ही जाते हो, तो हार्डिक्स कहता है मैं तो अचेतन हूं, मैं कैसे चिंतन कर सकता हूं। लेकिन मति ज्ञान तो चेतन है ना, जड़ नहीं है। मति ज्ञान जड़ नहीं है, चेतन है। चेतन होकर के जानता तो है, लेकिन चिंतन करने की कैपेसिटी उसके पास नहीं। जानने की कैपेसिटी है, स्मरण में रखने का काम वो कर सकता है, लेकिन स्मरण में रखे हुए विषय को चिंतन भी करके दे दो तो वो कहता है ये मेरा काम नहीं, मेरे साइड में जो रहता है उनको बता दो। श्रुत ज्ञानोपयोग, श्रुत ज्ञानोपयोग को कहता है कि उधर जाओ, चिंतन सुनना चाहते हो तो श्रुत ज्ञान के पास जाओ, और तुम सारा जो कुछ भी उसने दिया है याद रखने के लिए, उसको सुनना चाहते हो तो हमारे पास बैठो। रटी हुई बात को मैं सुनाता हूं, पर केवल सुनाने लायक है मेरे विषय। आप कहोगे कि उस पर जरा चिंतन भी बताते जाओ साथ साथ, नहीं, ये मेरा काम नहीं। वितर्क श्रुतम, श्रुत ज्ञान चिंतक होता है और वह चिंतनशील ही रहता है, हमेशा आराम से रहता है वो चिंतन करता हुआ। उसका स्मरण रखना उसका काम नहीं है। वो कहता है मैं स्मरण नहीं रखूंगा, मैं आराम से बैठ करके चिंतन करूंगा, ये ऐसा क्यों, ये ऐसा क्यों, ये वैसा क्यों, ऐसा हो तो कैसा, ये चिंतन करूंगा। क्यों, थोड़ा याद भी रखा करो ना। नहीं, ये मेरा काम नहीं, ये तो पड़ोसी का काम। श्रुत ज्ञान कहता है पड़ोसी के पास जाओ, धारणा मति ज्ञान के पास जाओ, आपको संपूर्ण पाठ सुना देगा, तत्वार सूत्र सुना देगा, समय सार सुना देगा, छह डाला सुना देगा, समय सार सुना देगा, सभी ग्रंथ सुना देगा वो, और हो तो सुना देगा, हो तो नहीं सुनाएगा। सेव हो गया हो तो जितना सेव हुआ है उतना ही सुनाएगा, सेव नहीं हुआ तो नहीं सुनाएगा। तो ऐसा इस आत्मा के पास ज्ञान नामक एक जो गुण है, ज्ञान नामक जो ये शक्ति है, ज्ञान का जो एक बल है, ये बल निरंतर परिणमनशील है काल द्रव्य के माध्यम से। काल द्रव्य उस गुण के परिणमन में भी सहयोग दे रहा है, और शरीर के परिणमन में भी सहयोग दे रहा है। सभी द्रव्य, अनंतानंत द्रव्य, उनके गुण, उनकी पर्याय जो कुछ भी होती हैं, सब काल द्रव्य की देन है। उन द्रव्यों में परिणमन कराना, उन गुणों में परिणमन कराना काल द्रव्य की देन है। पर कालद्रव्य जबरदस्ती परिणमन नहीं कराता। हमारा अशुभोपयोग शुभोपयोग की तरफ आया, ये परिणमन होकर के आया या विदाउट परिणमन ही आया, तटस्थ होकर के आया? ज्ञानोपयोग में परिणमन रहा, अशुभोपयोग से शुभोपयोग की ओर जाने का वो परिणमन उसके भीतर रहा, रहा इसलिए शुभोपयोग हुआ। अगर काल द्रव्य न होता तो हम अशुभोपयोग से शुभोपयोग में नहीं आ सकते थे, क्योंकि वह काल द्रव्य हमारे ज्ञान गुण को भी परिणमन करा रहा है और हमारे में परिणमन होने की यानी ज्ञान गुण में परिणमन होने की उपादान शक्ति है। ये उपादान है और काल द्रव्य निमित्त है। काल द्रव्य बाह्य निमित्त है और हमारा उपयोग उसके निमित्त को पाकर के परिणमन होने की योग्यता रखता है, इस योग्यता का नाम उपादान, इसी को कहते हैं उपादान। उपादान जब अशुभ उपयोग रहेगा तो उपादान भी अशुभ रहेगा, उसमें अशुभ की भी उपादान है और शुभ की भी उपादान है, शुद्ध की भी उपादान है, और इनसे परे जो केवल ज्ञानोपयोग है उसका भी उपादान है। यही उपादान कारण शुभोपयोग में ढलेगा, यही उपादान कारण शुद्धोपयोग में ढलेगा, यही उपादान कारण केवल ज्ञानोपयोग में ढलेगा, यही अपना तरक्की करेगा, यही अपना। लेकिन ऐसा है, अशुभोपयोग का उपादान शुभोपयोग को तो प्राप्त करा सकता है, लेकिन अशुभोपयोग के उपादान में यह योग्यता नहीं कि डायरेक्ट केवल ज्ञान को प्राप्त करा दे। अशुभोपयोग के उपादान में यह क्षमता भी नहीं है कि डायरेक्ट शुद्धोपयोग को दिला दे। अशुभोपयोग के उपादान में ये उपादान की योग्यता, पूर्ण योग्यता तो है जो अशुभ उपादान से शुभ उपादान में आ सकता है, शुभ उपयोग में आ सकता है। तो ये उपयोग जो परिवर्तनशील रहकर कन्वर्ट होता जाएगा अन्य अन्य रूप में, अन्य उपयोगों के रूप में, वह क्रम से ही होगा, ये क्रम भंग नहीं हो सकता। अशुभोपयोग सर्वप्रथम किस उपयोग में ढलेगा? शुभोपयोग में। फिर शुभोपयोग किस उपयोग में ढलेगा? शुद्धोपयोग में। तो शुभोपयोग के भीतर जो उपादान है वह उपादान केवल ज्ञान डायरेक्ट देने का उपादान है या शुद्धोपयोग को देने का उपादान है? शुद्धोपयोग को देने का उपादान है। और शुद्धोपयोग, शुद्धोपयोग में क्या क्या उपादान है? केवल ज्ञान को देने का उपादान है। अगर वो केवल ज्ञान प्राप्त नहीं हो सका और ग्यारहवें गुणस्थान तक जाकर के शुद्धोपयोग की अनुभूति भी करके नीचे आया तो उसके भीतर यह भी तो उपादान है कि शुभोपयोग को वो पहले शुभ में ही आता है, पहले शुभ में आए बिना अशुभ में नहीं जाएगा, क्योंकि गुणस्थान क्रमशः गिरता है, ग्यारहवीं से दसवें, दसवें से नवें, नवें से आठवें, आठवें से सातवें, सातवें से छठे, फिर छठे से डायरेक्ट प्रथम में गिर सकता है, पर छठे गुणस्थान तक तो क्रमशः ही आएगा। हां, यदि उपयोग, यदि उसको श्रेणी में मरण हो जाए तो भी शुभोपयोगी रहेगा, शुभोपयोग में गिरेगा, शुद्धोपयोग से, शुद्धोपयोग से शुभोपयोग में ही गिरेगा। हां, क्योंकि मरण ग्यारहवें में भी हो सकता है, ग्यारहवें में मरण हो गया तो वो नीचे सीधा चौथे में आता है, चौथे गुणस्थान में, तो चौथे गुणस्थान में कौन सा उपयोग है? शुभोपयोग है, तो शुद्धोपयोग ही कभी भी शुभोपयोग में ही गिरता है। उधर ऊपर जाए तो केवल ज्ञानोपयोग को प्राप्त करता है और नीचे जाए तो शुभोपयोग को प्राप्त करता है, और शुभोपयोग में आने के बाद फिर शुभोपयोग में कितनी प्रकार की उपादान शक्ति है, शुभोपयोग के अंदर उपादान कितने प्रकार के उपादान हैं, दो प्रकार का। ये शुद्धोपयोग को भी जन्म दे सकता है और अशुभोपयोग को भी जन्म दे सकता है। तो इस प्रकार से यद्यपि दो उपयोग हमारे लिए उपादेय हैं, यद्यपि हमारे लिए दो उपयोग ही उपादेय हैं, और एक तो सर्वता है, सर्वता है क्योंकि वो संसार का कारण है। दो उपयोग, हाँ दो उपयोग, एक परंपरा से मोक्ष का कारण है, परंपरा से केवल ज्ञान की उत्पत्ति का कारण है शुभोपयोग, और शुद्धोपयोग साक्षात केवल ज्ञान की उत्पत्ति में कारण है, और ये दोनों ही उपयोग परंपरा से मोक्ष के कारण है, क्योंकि इनके इनको प्राप्त किए बिना मोक्ष की प्राप्ति भी नहीं होती। इसलिए ये दोनों उपयोग परंपरा से मोक्ष के कारण है, और इसमें से एक साक्षात केवल ज्ञान की उत्पत्ति में कारण है, और इसमें से शुभोपयोग साक्षात शुद्धोपयोग का कारण है। इस प्रकार जिनागम में कारण कार्य की जो व्यवस्था बताई है वो अमोघ व्यवस्था है। अपने ज्ञानोपयोग को रिफाइन करने में ये कारण कार्य की व्यवस्था काम में आती है। तो इसको भी काम में लेकर के ही हमारे श्रुत ज्ञानोपयोग को मांझना पड़ता है, व्यवस्थित करना पड़ता है। इसके भीतर सोचने में कोई गलती हुई हो तो उस गलती को संशोधन के लिए इसको आगे बनाना पड़ता है। किसको किसको आगे बनाना पड़ता है, किसको आगे बनाना पड़ता है, कार्य कारण व्यवस्था को आगे बनाना पड़ता है। इसमें बिठा के देखना पड़ता है कारण कौन और कार्य कौन, और कारण कार्य की जो व्यवस्था है ये न्याय, न्याय की कोटि में आता है, ये न्याय की कसौटी है। कारण और कार्य एक सब्जेक्ट है, आगम नहीं, एक सब्जेक्ट है, एक सहारा है, जिस सहारे पर अपने श्रुत ज्ञान रूपी सोने को रख करके देखना है इसमें कारण कौन इसमें कार्य कौन। वो कारण कार्य की तराजू पर रखते ही हमारे लिए बराबर व्यवस्थित ज्ञान हो जाता है, हाँ ये कारण है और ये कार्य है, बैठ रहा है बैठ रहा है। तो न्याय के कसौटी पर अगर कोई विचारधारा चिंतन ठीक बैठ गया तो आप दुनिया में कहीं भी जाओ इसका काट नहीं हो सकता, इसका विरोध नहीं हो सकता, इसको लेकर के कोई प्रश्न उठा ही नहीं सकता। अगर प्रश्न उठ गए, हजार प्रश्न उठे, हजार प्रश्नों का उत्तर उसमें है। इसलिए कारण कार्य की व्यवस्था को न्याय की व्यवस्था की कोटि में लेकर के भगवान ने कहा, किसी भी बात को चिंतन कर रहे हो तो कारण कार्य की व्यवस्था को साथ में लेकर के चलो, उसको भूलो नहीं। अगर उसको भूल करके कुछ हमने किया तो हमारा श्रुत ज्ञानोपयोग डगमगा जाएगा, उसको रास्ता नहीं मिलेगा, कहां जाऊं कहां जाऊं। बिल्ली कमरे में घुस गई है और सारे दरवाजे बंद हो गए, और जिसने दरवाजा बंद किया उसी को मालूम नहीं कि दरवाजे बंद हैं, और वह बैठ गया। लेकिन बिल्ली दरवाजा बंद होने के बाद, वो तो श्रुत ज्ञान की बिल्ली है वो तो कहीं ना कहीं से जगह तो ढूंढेगी, हमको अंदर बंद क्यों किया गया। तो अगर जाने को रास्ता नहीं मिली तो छटपट आएगी, चिल्लाएगी वो। तो जहां पर दरवाजे बंद हैं वहां पर प्रश्न उठेंगे, ये दरवाजे बंद क्यों, यहां रास्ता क्यों नहीं है, ये कैसा घर, ये इस घर को दरवाजा भी नहीं लगाया क्या, ये खिड़की भी नहीं लगाया क्या, थोड़ा सा छेद भी नहीं रखा क्या, अंदर रहने वाले अंदर कैसे रहेंगे और बाहर से आने वाले बाहर से अंदर कैसे आएंगे, ये शंकाएं उत्पन्न होंगी क्या नहीं होंगी। इसलिए कारण कार्य व्यवस्था की खिड़की को एक खिड़की कारण है और एक खिड़की कार्य है। वेंटिलेशन चाहिए, इधर की हवा आती है तो इधर से आने के बाद अंदर न ठहरे, अंदर के विकार को लेकर के वो बाहर जाए। यहां पर तो धुआं भर गया है, यहां पर तो बदबू भर गई है, इसको खाली करने के लिए दो खिड़की चाहिए ना, एक कारण की खिड़की और एक खार की खिड़की। तो एक तरफ से चिंतन का वह प्रवाह भीतर प्रवेश करेगा और एक खिड़की से ले जाकर के निकल जाएगा। ऐसा निकलने का कोई साधन हो तो क्वेश्चन नहीं उठेंगे और साधन न हो तो क्वेश्चन उठेंगे, अरे ये खिड़की से तो हम अंदर आ गए लेकिन बाहर जाने का कोई दूसरा रास्ता ही नहीं, तो ये तो प्रश्न उठ गया। तो रास्ता बनाओ, हर घर में दो खिड़की तो होना ही चाहिए, ये वास्तुशास्त्र है। और वास्तुशास्त्र का आप प्रकृति का नियम वास्तुशास्त्र उसका उल्लंघन करेंगे तो अंदर घुटन होगी। एक खिड़की है और दूसरी नहीं है, तो अंदर जो विकार भरा हुआ है उसको निकलने के लिए और इधर से आने वाली हवा को दबा करके उस विकार को बाहर निकालने के लिए दूसरा मार्ग नहीं है, तो प्रश्न उठेंगे ही उठेंगे। ये प्रकृति नियम है, प्रकृति नियम से हमारे उपयोग को हमारे लिए दो खिड़की रखना चाहिए। शुद्ध उपयोग को प्राप्त करना है क्या? नहीं करना है तो श्रुत ज्ञानोपयोग को यह समझाना पड़ेगा। पीछे से चिंतन करने वाला श्रुत ज्ञानोपयोग का प्रवाह आने वाला है, दो खिड़की तैयार रखो, नहीं तो वो श्रुत ज्ञानोपयोग आकर के यहीं पर अटक जाएगा, बैठ जाएगा घर में, तटस्थ हो जाएगा। फिर तटस्थ नहीं, वो तो शक्ति वाला है, निरंतर प्रवाहित है, इसको रोकना नहीं। उपयोग को रोके तो टेंशन उत्पन्न होगा। जबरदस्ती में अपन ने मान लो उस उपयोग को रोक दिया, नहीं इसके आगे नहीं सोचना, इसके आगे नहीं सोचना, तो टेंशन आएगा वहां, क्योंकि पीछे से आने वाला पानी यहां भरेगा और प्रेशर होगा फिर, और प्रेशर ही टेंशन है। तो अपने ज्ञानोपयोग को निरंतर प्रवाहित रखना चाहिए जब तक केवल ज्ञान ना हो। कहीं किसी विषय को सुनकर आप धारणा बना लेते हैं, बना लो कोई बात नहीं, बना लो, धारणा बनाने में कोई दिक्कत नहीं, पर वह धारणा भी सही है या गलत है इसको संशोधन करने के लिए अवकाश ही नहीं दोगे क्या? हाँ? देना पड़ेगा ना। धारणा अगर गलत है तो वो मति ज्ञान के पास से गलत धारणा वाला विषय वहां पर रिकॉर्डिंग सेव हुआ है, तो उस धारणा रूप मति ज्ञान में से उस विकार को भी हम जब तक दूर नहीं करेंगे, तो मति ज्ञान भी कहता है मेरे पास जो गलत होता है गलत ही देता हूं। तो श्रुत ज्ञान को अगर समझ में आता है कि ये तो गलत है, ऐसी कैसी तुमने धारणा बना ली, मैं क्या करूं, तुमने ही चिंतन करके हमारे पास दिया था, जो दिया था वही सेव करके हमने रखा है, ये तुम्हारा ही विषय है। अच्छा ऐसा हो गया क्या, तो मैंने ही गलत किया होगा, गलत चिंतन किया होगा। तो श्रुत ज्ञानोपयोग, आ गई बिल्ली, अब जाने को रास्ता नहीं है तो टेंशन है, आप लोग ऐसे बैठेंगे किधर से जाए वो बिल्ली। श्रुत ज्ञान के पास प्रवाह में एक शक्ति होती है, वो आती है तो ऐसे 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 बस निकलने को सोचती है। प्रवाह ज्ञानोपयोग का प्रवाह ऐसा होता है, उसको एक रास्ता दे जल्दी, नहीं तो टेंशन में आएगा वो उपयोग। इसलिए धारणा अगर गलत है तो उस धारणा को भी सुधार करके उस श्रुत ज्ञानोपयोग को रास्ता प्रशस्त करके दे देना चाहिए। जाओ आगे जाओ, कहां जा रहे हो? मैं केवल ज्ञान प्राप्त करने जा रहा हूं, केवल ज्ञान प्राप्त करने जा रहा हूं, जाओ जाओ जल्दी जाओ। तो अशुभोपयोग सभी बंधनों को, अज्ञान को, दोष को तोड़कर शुभोपयोग के वहां पहुंच जाता है तो रास्ता मिल जाता है, फिर शुभोपयोग में भी रुकता नहीं है, वो और मार्ग खोजता है कहां जाना है कहां जाना है, वहां चला गया और शुद्धोपयोग में गया, और शुद्धोपयोग में भी चुपचाप नहीं रहता है, वो तटस्थ नहीं कर सकते उसको, और भी आगे बढ़ता है, छपक श्रेणी चढ़ जाता है। तो वही श्रुत ज्ञानोपयोग जा करके केवल ज्ञान के पास ठहर जाता है, अंतर मुहूर्त तक ठहरता है वहां बारहवें गुण स्थान में, और वहां उसके सारे विकार दूर होते हैं। इधर जो आत्मा के ऊपर घाती कर्म लगे हुए थे वो सब पिघल करके नीचे गिर जाते हैं, और उस उपयोग के ऊपर जो ज्ञानावरणी कर्मों का आच्छादन था वो ज्ञानावरणी कर्म को झाड़ देता है वो, तो सारा का सारा ज्ञानावरणी कर्म नीचे गिरता है, मोहिनी कर्म को तो पहले से ही झाड़ देता है दसवें गुणस्थान में, वहां बारहवें में जाकर के ज्ञानावरणी को, अंतराय को और दर्शनावरणी को सबको एक साथ झाड़ करके वह अक्षय होकर अनंत होकर तेरहवें गुणस्थान में प्रवेश करता है, वहां जाकर के ठहर जाता है। ये ठीक उपयोग इस उसी प्रकार से है जैसा जैसे एक नदी है पहाड़ों से निकलती है, नदी का उद्गम पहाड़ होता है, पहाड़ से धारा वो निकली और फिर धरती पर आई, धरती पर से इधर उधर से पानी आने वाला पानी उसी धारा में शामिल होता है और वह आगे बढ़ जाता है, जहां भी जाता है गड्ढा करता हुआ चला जाता है, उपयोग में यह ताकत है, गड्ढा करेगा वो, प्रेशर बहुत है उसका, गड्ढा करेगा, गड्ढा करके आगे बढ़ता है, रुकता नहीं है वो। तो जब गड्ढा ही पड़ गया तो स्वयं में उसके दो तट बन गए, एक लेफ्ट साइड और एक राइट साइड, और ये उपयोग की धारा आगे बढ़ रही है। भगवान कहते हैं इस बात को समझो, ये नदी है, ये उपयोग है, ये सदा आगे आगे बढ़ता रहता है, ये बढ़ता बढ़ता केवल ज्ञान को प्राप्त कर सकता है, जब तक केवल ज्ञान को प्राप्त नहीं करता तब तक इसका नाम नदी है, और केवल ज्ञान को जब प्राप्त करता है तब यह समुद्र है। समुद्र के तट नहीं होते, ओर छोर नहीं होता, इतना विशाल होता है, पर नदी को बहने के लिए तट होता है, समुद्र कभी बहता नहीं, वो स्थिर रहता है, पर समुद्र बना किससे? नदी से, और नदी बने किससे? नदी बने किससे? पहाड़ से, ठीक है, पहाड़ से नदी बने। हम प्रश्न करते हैं अगर समुद्र न होता और अकेले पहाड़ होते क्या नदी को जन्म देते? वो पानी आया कहां से? जो पहाड़ पर पानी आकर के गिरा वो पानी आया कहां से? सागर से आया कि नहीं आया? वही तो पूछ रहा था मैं। पानी सागर से ही आता है, पानी सागर से आता है, और भीतर सागर के समान अनंत बलशाली आत्मा योग्यता की अपेक्षा से, अपनी उपादान योग्यता की अपेक्षा से वह केवल ज्ञान के धारी है, उसमें केवल ज्ञान पैदा करने की योग्यता है, केवल ज्ञान उसके भीतर मौजूद है, शक्ति की अपेक्षा से मौजूद है। व्यक्त की अपेक्षा से भीतर केवल ज्ञान थोड़ी है, व्यक्त की अपेक्षा से तो अभी नदी है, सागर नहीं। अब यही नदी, उपयोग वाली, तीन प्रकार के उपयोग वाली नदी अपने दोनों तटों के बीच बहती हुई सागर तक पहुंचेगी, जब सागर में जाकर ढलेगी अनंत बन जाएगी। यही उपयोग अनंत बनने वाला है, यही पहला शुद्ध उपयोग था जो आज अनंत बन रहा है, यही उपयोग सीमित था जो अभी अनंत के रूप में ढल करके वो छोर रहित हो गया, लोकालोक को जानने की कैपेसिटी इसके भीतर आ गई। नदी के भीतर पानी भी सीमित और नदी का ओर छोर भी होता है, इसलिए उसके दो तट भी हैं। इन दो तटों के बीच बहने वाली इस नदी को उन्होंने कहा कि पर्वत को त्यागो। पर्वत एक बिंदु है जिस बिंदु से नदी निकली। जब यह बिंदु पर था उस बिंदु को छोड़े बिना दो तट नहीं बन सकते। जल के कण ऊपर से गिरे, बिंदु बिंदु बन गए, वो वहीं ठहरेंगे तो नदी का नदी नहीं बन सकेंगे। तो बिंदु बिंदु मिल करके जब बहेंगे आगे बढ़ेंगे तो वो दो तटों का निर्माण स्वयं करेंगे। तो अशुभोपयोग को त्याग करके जब जीव शुभोपयोग में जाता है तो नियम से वह शुद्धोपयोग को भी आज न कल प्राप्त करता ही है। तो हमारे दो तट बन गए, एक शुभोपयोग और एक शुद्धोपयोग। शुद्धोपयोग और शुभोपयोग, शुद्धोपयोग और शुभोपयोग, मुनि दोनों तटों के बीच बहते रहते। शुभोपयोग को भी छठे सप्तम गुण स्थान में आने के बाद शुभोपयोग का भी सहारा लेते हैं और जब ध्यान में चले जाते हैं, सामायिक में चले जाते हैं, तो शुद्धोपयोग का भी सहारा लेते हैं। इस प्रकार पूरा उनका जीवन शुभोपयोग और शुद्धोपयोग के बीच उपयोग की धारा बहती बहती बढ़ती है। जब वो शुभोपयोग शुद्धोपयोग दोनों को साथ लेकर के छठे गुण स्थान को पार करते हैं तो शुद्धोपयोग आ जाता है। शुद्धोपयोग में वहां भी दो तट चाहिए ना, वहां भी दो तट चाहिए। तो दो तट वहां कौन है? दो तट वहां कौन है? यहां तो जब छठे में रहा शुभोपयोग के दो तट रहे, शुभोपयोग के भी दो तट रहे, वो तट दो तट कौन? तो संयम, संयम के दो तट हैं, द्रव्य संयम और भाव संयम। द्रव्य संयम भाव संयम के बीच उनका जो श्रुत ज्ञानोपयोग बह रहा है ये निश्चित रूप से शुद्धोपयोग की सीमा में पहुंचेगा। और शुद्धोपयोग में जाने के उपरांत यह कौन से दो तट के बीच बहेगा? तो कहते हैं वही तो दो तट हैं जो पहले थे। वहां पर भी द्रव्य व्रत हैं, वहां पर भी भाव व्रत हैं। द्रव्य व्रत और भाव व्रतों के बीच श्रुत ज्ञानोपयोग ने जो रत्नत्रय धारण किया है उस रत्नत्रय के माध्यम से आगे बढ़ रहा है। तो वही रत्नत्रय तो निश्चय रत्नत्रय के रूप में कन्वर्ट हुआ है। ये द्रव्य चारित्र और भाव चारित्र के बिना नहीं हुआ है। उसी द्रव्य और भाव चारित्र के बीच रत्नत्रय धारण किया है। यह रत्नत्रय जब छठे सप्तम में था तब व्यवहार रत्नत्रय कहलाता था, तब शुभोपयोग कहलाता था, और आगे जब पहुंच गया शुद्धोपयोग की सीमा में तब यह निश्चय रत्नत्रय कहलाने लगा, वीतराग रत्नत्रय कहलाने लगा। और यही वीतराग रत्नत्रय जा करके टकराएगा किससे? ज्ञानावरणी कर्मों से, अंतराय कर्मों से, दर्शनावरणी कर्म से, मोहनी कर्म से टकरा कर फिर उन तीनों से टकराएगा। फिर जा करके जब वो टकराता है तो समुद्र की शरण मिलती है। शुद्धोपयोग जा करके जब टकराता है तब केवल ज्ञान की उत्पत्ति होती है। किस किस से टकराता है? पहले मोहनी कर्म से टकराता हुआ उस मिट्टी को उखाड़ता हुआ निकल जाता है, फिर बारहवें गुणस्थान में जाकर के ज्ञानावरणी से, दर्शनावरणी से, अंतराय से टकराकर इन कर्मों को, इन पत्थरों को अलग, मिट्टी को अलग कर देता है। और फिर अपने को समुद्र में जाने के लिए रास्ता बना देता है। और यही ज्ञानोपयोग, श्रुतक ज्ञानोपयोग जब समुद्र में कूद जाता है तब वह केवल ज्ञानोपयोग कहलाता है। श्रुतक ज्ञानोपयोग ही केवल ज्ञानोपयोग में कन्वर्ट होता है। नदी जब समुद्र में कूद जाती है, समुद्रमय हो जाती है, तो नदी का जल समुद्र में जाने के बाद नदी को ढूंढा नहीं जा सकता। क्या ढूंढ सकते हैं? हमारी गंगा नदी कहां है? पश्चिम बंगाल के समुद्र में जाकर के, पूर्व बंगाल के समुद्र में जाकर के ढूंढ सकते? पूर्व में है ना, पश्चिम, पूर्व दिशा में है यहां की अपेक्षा से। तो गंगा नदी को समुद्र में जाने के बाद गंगा नदी की खोज कर सकते हैं? तो गंगा नदी है तो सही, उसमें है, लेकिन किस रूप है? सागर रूप है। तो श्रुतक ज्ञान किस रूप है केवल ज्ञान में ढलने के बाद? है केवल ज्ञान रूप में ही रह गया, सागर रूप रह गया। अब उस क्षायोपशमिक उपयोग को क्षायिक संज्ञा प्राप्त हो गई, इसी का नाम केवल ज्ञानोपयोग। क्षायिक ज्ञानोपयोग का नाम केवल ज्ञानोपयोग, और क्षायोपशमिक ज्ञानोपयोग का नाम अशुभोपयोग, शुभोपयोग और शुद्धोपयोग। तीनों में उसको रख सकते हैं, क्योंकि तीनों ही क्षायोपशमिक है, तीनों क्षायोपशमिक है। अब देखो, उपयोग को जरा और एकाग्र करो। एक विशेष बात कहने जा रहे हैं, ये ज्ञानोपयोग है। बारहवें गुणस्थान तक क्षायोपशमिक रहा, तेरहवें में जाने के बाद यही क्षायिक बन गया। अब रास्ते में हमको चौथा गुणस्थान भी मिला, किसी को मिला तो मिला, किसी को नहीं मिला तो उनकी बात नहीं कह रहे हैं, किसी को चौथा गुणस्थान मिला। तो इसका क्षायोपशमिक ज्ञान अशुभोपयोग को त्याग कर शुभोपयोग में आया, चौथे गुणस्थान में गया, तो किस उपयोग को त्यागा और किस उपयोग को धारण किया? त्यागा शुभोपयोग को धारण किया, और इसी को आगे बढ़ाया। कितने गुणस्थानों तक आगे बढ़ाया? नहीं नहीं, शुभोपयोग में है अभी। हाँ हाँ, चौथे को, चौथे से पंचम में ले गया, पंचम में छठे में ले गया, छठे में सप्तम में भी ले गया, तब तक शुभोपयोग है, तब तक शुभोपयोग है। तो यहां पर सातवें गुणस्थान तक शुभोपयोग एक ही है, शुद्धोपयोग का अंश मिला क्या यहां? आंशिक रूप से शुद्धोपयोग यहां किसी को प्राप्त हो सकता है क्या? उपयोग दो हो जाए एक साथ, एक धारा में दो उपयोग की धारा अगर प्राप्त हो जाए तो ये गड़बड़ हो जाएगा। यहां समझने की बात ये है, अपन उसको क्या कह रहे हैं? शुद्धोपयोग कह रहे हैं, परंतु वहां शुद्धोपयोग नहीं है, शुभोपयोग अकेला ही है। शुभोपयोग के साथ जो विशुद्धि बढ़ रही है, हमने अभी कहा था जहां जहां उपयोग है वहां वहां विशुद्धि अवश्य है, परंतु जहां जहां, हां जहां जहां विशुद्धि है वहां नियम से शुभोपयोग हो ये नियम नहीं, या नियम से अशुभोपयोग हो ये नियम नहीं, या नियम से वो हो ये नियम नहीं, शुद्धोपयोग। विशुद्धि अलग बात है और उपयोग अलग बात है। जहां उपयोग रहेगा वहां विशुद्धि तो रहेगी, और पर्टिकुलर एक उपयोग जो रहेगा वहां पर शुभोपयोग, तीनों उपयोग रहेंगे ऐसा नियम नहीं है। विशुद्धि रहेगी पर उपयोग रहे नहीं रहे ये न्याय है, नियम है ये। तो हमने अशुभोपयोग को त्याग कर शुभोपयोग को धारण कर लिया, और यह शुभोपयोग की धारा चौथे गुणस्थान से लेकर सप्तम गुणस्थान तक जाएगी। इसमें विशुद्धि रहेगी कि शुद्धोपयोग रहेगा? हाँ, इतना ही निर्णय करना है अपने को। इसको न्याय की कसौटी पर चढ़ाओ, इतना ही निर्णय करना है। यहां विशुद्धि रहेगी कि नहीं रहेगी? रहेगी, पर शुद्धोपयोग रहेगा क्या? शुभोपयोग के साथ नहीं रहेगा। तो हमारे लिए यह समझ में आ रहा था अभी तक कि वह जो विशुद्धि है उसी का नाम शुभोपयोग, शुद्धोपयोग। वो जो शुभोपयोग के साथ निरंतर विशुद्धि बढ़ती जा रही है, चौथे से पंचम में ज्यादा विशुद्धि बढ़ गई, पंचम से ज्यादा छठे में विशुद्धि बढ़ गई, छठे से ज्यादा सप्तम में विशुद्धि बढ़ गई, उत्कृष्ट हो गई वो विशुद्धि। वह उस उत्कृष्ट विशुद्धि ही शुद्धोपयोग को जन्म देता है, इतना धारणा बना लो तो कहीं से कहीं तक प्रश्न भी नहीं उठेंगे और कहीं से कहीं तक ये गलत भी नहीं होगा। इतनी धारणा बना लो, इसको सेव कर लो, इसको रखो और आप अपने श्रुत ज्ञानोपयोग को काम दे दो। इस पर चिंतन करो, आप प्रश्न निकालो, आप अपने श्रुत ज्ञानोपयोग को बाद में काम देना, अभी मति ज्ञान को कह देना कि इसको सेव कर लो तो बाद में काम में आएगा वो। अभी सेव किया है ना, आप 10 दिन बाद भी अच्छी तरह से धारणा हो गई हो तो 10 दिन बाद भी और 10 साल बाद भी आप चिंतन करने के लिए आपके मति ज्ञान के पास वो भी मैटर सुरक्षित रहेगा। सेव है ना, कहां जाएगा वो? तो श्रुत ज्ञान जब मांगेगा कि शुद्धोपयोग क्या है, विशुद्धि को शुद्धोपयोग कहते हैं क्या, ये प्रश्न जब उठेगा तो मति ज्ञान से मांग लो उसको और श्रुत ज्ञान से कहो महाराज ने क्या उपदेश दिया था, ये दिया था क्या, विशुद्धि सो शुद्धोपयोग नहीं, विशुद्धि सो शुद्धोपयोग नहीं। विशुद्धि तो शुभोपयोग के साथ भी है, विशुद्धि तो अशुभोपयोग के साथ भी है। वह विशुद्धि एक ऐसी धारा है जो अनेक पर्यायों को जन्म दे सकती है। वही विशुद्धि की धारा जो अशुभोपयोग के साथ थी विशुद्धि, वह उसने ही शुभोपयोग को जन्म दिया। करण लब्धि में जाने के उपरांत 3 करण किया, ये किसके माध्यम से कार्य संपन्न हुआ? शुद्धोपयोग से। शुद्धोपयोग पर्याय है, विशुद्धि एक उपयोग की धारा है। इसी विशुद्धि को हम बढ़ा रहे हैं। पुरुषार्थ हमारे विशुद्धि पर चल सकता है, उपयोग पर नहीं चलता। उपयोग पर्याय है, आने के बाद मिट जाएगा वो। विशुद्धि नहीं मिटती, विशुद्धि आगे बढ़ती जाती है। उपयोग के भीतर जो निर्मलता आ रही है वो निर्मलता बढ़ती जाएगी, क्रमशः बढ़ती जाएगी, रुकेगी नहीं, तटस्थ नहीं रहेगी वो। अगर आप पुरुषार्थ के माध्यम से विशुद्धि को तटस्थ नहीं रख रहे हैं तो निरंतर बढ़ेगी। और यह विशुद्धि पहले गुणस्थान में भी है, और पहले गुणस्थान में जब सम्यक दर्शन की प्राप्ति होती है तब विशुद्धि तो आवश्यक है ही। विशुद्धि ही आवश्यक नहीं बल्कि शुभ लेशा भी आवश्यक है। और शुभ लेशा क्यों आवश्यक है? अशुभ लेशा के साथ कषाय तीव्र होती है और मंद कषाय के साथ लेशा शुभ होती है। तो इसलिए कहा तीव्र कषाय के साथ अशुभ लेशा होने से कषाय को मंद करो पुरुषार्थ पूर्वक तो शुभ लेशा की उपलब्धि होगी, ये पुरुषार्थ से होगा। और शुभ लेशा अगर उपलब्ध हो गई तो फिर विशुद्धि को बढ़ा सकते हो, वो विशुद्धि केवल ज्ञान तक काम में आएगी। और यही विशुद्धि जब जब शुभोपयोग का द्वार खटखटाएगी तो शुभोपयोग पर्याय प्राप्त होगी। जब वह शुद्धोपयोग का द्वार खटखटाएगी तब यही विशुद्धि शुद्धोपयोग को जन्म देगी। और जब क्षायिक ज्ञान केवल ज्ञान का द्वार खटखटाएगी तो यही विशुद्धि जो चरम सीमा पर यानी शुद्धोपयोग में सर्वोत्कृष्ट बन करके काम करेगी तो धड़ाम से घाती कर्मों को टकरा करके गिरा करके अक्षय केवल ज्ञान की प्राप्ति में काम करेगी, ये विशुद्धि है। इस विशुद्धि का नाम न तो शुभोपयोग है, न अशुभोपयोग है, न शुद्धोपयोग है। उपयोग का मतलब होता है कुछ समय की पर्याय जो क्षण स्थायी है, उस पर्याय का नाम अशुभोपयोग, उस पर्याय का नाम शुभोपयोग, उस पर्याय का नाम शुद्धोपयोग। और विशुद्धि का अर्थ होता है जीव अपने ज्ञानोपयोग के द्वारा जो अपने ज्ञान में निर्मलता बढ़ाता जा रहा है, उस निर्मलता का नाम, उस निर्मल शक्ति का नाम, उस निर्मल धारा का नाम विशुद्धि है। और यही विशुद्धि उस पर्याय के साथ मौजूद है जो शुद्धोपयोग रूप पर्याय है। उस शुद्धोपयोग रूप पर्याय के ऊपर जो आरूढ़ है ये विशुद्धि ही टकराती है घाती कर्मों से, और जब घाती कर्मों से टकराती है तो जीव को नर से नारायण कहते हैं ना, नर से नारायण बन सकता है, बन गया नर से नारायण बन गया। इसमें कौन काम आया? विशुद्धि काम आई। अरे शुद्धोपयोग का मोह छोड़ दो, हम कहते हैं विशुद्धि से मोह रखो, जो सर्वोत्कृष्ट विशुद्धि है और जो घाती कर्म को नष्ट करके केवल ज्ञान के द्वार को खोल देता है, शुभोपयोग के द्वार को खोल देता है। पर्याय से मोही मत हो, पर्याय का मोह छोड़ो, उस विशुद्धि से मोह रखो जो विशुद्धि केवल ज्ञान की उत्पत्ति के बाद भी रहती है, अनंत रूप रहती है और छद्मस्त अवस्था में वह अशुभोपयोग की पर्याय के साथ भी विशुद्धि है, शुभोपयोग के साथ भी है और शुद्धोपयोग के साथ भी है। और विशुद्धि शून्य रहना यह संसार है। और जब विशुद्धि से हम शून्य रहते हैं तो अशुभोपयोगी रहते ही हैं। विशुद्धि हो ना हो, कषाय तीव्र हो, मंद हो, कैसा भी हो, किसी भी परिस्थिति में हो, पर ज्ञानोपयोग तो रहेगा ही रहेगा, श्रुत ज्ञानोपयोग रहेगा, लेकिन वह विशुद्धि से शून्य रहेगा। अब इस ज्ञानोपयोग की धारा को आगे बढ़ाने का प्रयास पुरुषार्थ हम करेंगे तो हम केवल ज्ञान तक इसको पहुंचा सकते हैं। इसका नाम है उपयोग। कितना गहरा विषय है, सरल शब्दों में उदाहरण के साथ समझाने पर ऑटोमेटिक सारे विषय क्लियर समझ में आते हैं, और पूर्व में हमारे मति ज्ञान में उल्टे सीधे कोई विषय सेव हो चुके हों उसमें संशोधन होता है, और संशोधन होना आवश्यक भी है। अगर उसका संशोधन नहीं करेंगे तो इस पर्याय को बदलेंगे कैसे, हम शुभोपयोग को शुद्धोपयोग में कैसे ढालेंगे, और विशुद्धि को आगे आगे बढ़ा करके उसको घाती कर्मों से कैसे टकरा करके उनको गिराएंगे। रात दिन आगम का चिंतन चलना चाहिए। जिनेंद्र भगवान ने व्यवस्थित आगम दिया है, इसमें अपने तरफ से कोई गड़बड़ी ना हो, इसलिए चिंतन धारा को निरंतर प्रवाहित रखो, कहीं तटस्थ मत करो उसको। अभी तक जो भी अध्ययन हुआ हो, सुना हो, धारणा बनी हो, चिंतन किया हो, उसको भी रखो, पर उस पर तटस्थ मत होना, उसका संशोधन करते रहना, अपने उपयोग की धारा को बांधना नहीं। बांधोगे तो प्रेशर बढ़ेगा, प्रेशर बढ़ेगा तो मार्ग नहीं मिलेगा, मार्ग नहीं मिलेगा तो विनाश हो जाएगा। हाँ, प्रेशर बढ़ेगा उसका, तो प्रेशर नहीं बढ़ने देना, फ्लो बहने देना उसको, सहज रूप से जाए, वो जिधर जाता है जाने दो। सिर्फ इतना ही सावधान रखो कि इस उपयोग में मोह को आने मत दो, क्रोध को आने मत दो, राग द्वेष आने मत दो। राग द्वेष को जीतने का नाम ही शुभोपयोग है, और कुछ राग द्वेष का जीतने का नाम शुद्धोपयोग है, और राग द्वेष का अभाव करने का नाम केवल ज्ञानोपयोग है। यही तो काम करना है, कहीं कुछ अटकना नहीं। अटक गए तो भटक गए, कहीं भटकने की जरूरत नहीं। अपन स्वतंत्र है क्या? नहीं,
स्वतंत्र ही है,
स्वतंत्र ही है। एक आप ये भी कहते हैं, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य को कुछ नहीं कर सकते, फिर हमारा ज्ञानोपयोग दूसरे ज्ञानोपयोग से अटका रह सकता है? अपने ज्ञानोपयोग को निरंतर प्रवाहित उन्मुक्त रखना चाहिए ना, स्वतंत्र रखना चाहिए उसको।
खाली 4 महीने अटकाएंगे।
हमको अटका सकते हैं, हमारे उपयोग को नहीं अटका सकते। शरीर अटक सकता है क्योंकि ये जड़ वस्तु है, इसको कोई रोक सकता है, और मैं तो स्वतंत्र हूं, मैं पिंजरे से भी निकल करके जा सकता हूं। ऐसा यह ज्ञानोपयोग है। इस ज्ञानोपयोग की आराधना हमें शुभोपयोग के माध्यम से और शुद्धोपयोग के माध्यम से करना चाहिए। शुद्धोपयोग केवल ज्ञान की उत्पत्ति का साक्षात कारण, और शुभोपयोग शुद्धोपयोग का शुद्धोपयोग की प्राप्ति का साक्षात कारण, और अशुभोपयोग नहीं, अशुभोपयोग शुभोपयोग की प्राप्ति का साक्षात कारण। नहीं समझ में आया, थोड़ा खोलना पड़ेगा, थोड़ा खोलना पड़ेगा। करण लब्धि में ढला हुआ जीव अभी भी अशुभोपयोगी है, केवल चौथा गुणस्थान नहीं आया। ये पांच लब्धियां प्रथम गुणस्थान में ही उत्पन्न होती है। उपयोग कौन सा है? अशुभोपयोग। जब तक चौथा गुणस्थान नहीं होगा, अशुभोपयोग रहेगा। अब इस अशुभोपयोग के साथ हमारा पुरुषार्थ क्या हो रहा है, किस रूप हो रहा है? विशुद्धि को बढ़ाने का हो रहा है। विशुद्धि ही सम्यक दर्शन को जन्म देने वाली है, और वही विशुद्धि अनंत अनुबंधी को मिथ्यात्व को टकरा के उसको गिराने वाली है, है? विशुद्धि ही गिराने वाली है। तो शुभ लेशा को साथ लेकर, कषाय को मंद कर, सम्यक दर्शन की भूमिका में आकर पांच लब्धि में चढ़ते चढ़ते हम करण लब्धि में पहुंच गए। उसमें भी अपूर्व करण, अनिवृत्तिकरण, अधकरण, अधकरण, अपूर्व करण, अनिवृत्तिकरण में पहुंच गए। अनिवृत्तिकरण में पहुंचने के बाद भी तो अशुभोपयोग है, क्योंकि वो अभी तक उसको चौथा गुणस्थान नहीं हुआ है। तो लब्धियां, ये तीनों करण सहित जो लब्धियां हैं, कि इन तीनों करण सहित पांचवी लब्धि में जो तीन करण होते हैं, उन तीनों करण सहित जो पांचों लब्धियां हैं, ये पहले गुणस्थान में होते हैं कि चौथे में? यदि चौथे में होते हैं ये कहेंगे, तो सम्यक दर्शन उत्पत्ति के बाद भी लब्धियां आवश्यक है, ये हो गया। इन्हें कार्य सिद्धि होने पर भी कारणों की आवश्यकता पड़ती है, ये हो जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं, जब कार्य सिद्ध होता है तो कारण रहता नहीं है, ये न्याय है। कार्य सिद्धौ सत्याम, कार्य सिद्धौ सत्याम कारणस्य अभाव जायते एव, कारणस्य सद्भाव कार्य न भवति। हाँ हाँ, जाला पाइए। कारण का सद्भाव कार्य सिद्ध होने पर नहीं रहता, कारण छूट जाता है और कार्य रह जाता है। तो चौथा गुणस्थान कार्य है, और चौथे गुणस्थान के परिणामों की उत्पत्ति के ये पांच लब्धियां हैं, और उसमें जो विशुद्धि आदि है वो भी कारण है। तो चौथे गुणस्थान में आने के बाद भी पांच लब्धि और पांच लब्धि के साथ रहने वाली विशुद्धि रहेगी क्या? अभाव होता है। तो पांच लब्धि के काल में उपयोग कौन सा था? अशुभोपयोग था। तो वह अशुभोपयोग ऐसा अशुभोपयोग था जो बिल्कुल मंद अशुभोपयोग था, तीव्र अशुभोपयोग जो रहता है पांच लब्धि को जब प्राप्त नहीं करता उससे पहले, वो गाढ़ा अशुभोपयोग रहता है। और यही अशुभोपयोग तरल 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 होता हुआ, हाँ, अनंत अनुबंधी को मंद होने से तरल हो जाता है अशुभोपयोग। मिथ्यात्व का उपशमन उपशमन नहीं, बल्कि उसके अनुभव शक्ति आदि को घटाता घटाता हुआ चला जाता है, तो तरल हो जाता है। तो तरल अशुभोपयोग के साथ जो विशुद्धि होती है वह सम्यक दर्शन की उत्पत्ति में कारण है, और सम्यक दर्शन कार्य है, सम्यक दर्शन कार्य है। तो ये कारण कार्य की व्यवस्था जो है अशुभोपयोग के साथ है। अगर उस विशुद्धि को हम शुद्धोपयोग समझेंगे तो शुद्धोपयोग कारण हुआ और शुभोपयोग कार्य हुआ चौथे गुणस्थान वाला, कितना अनर्थ हो जाएगा। शुद्धोपयोग कारण बन सकता है। अरे शुद्धोपयोग तो शुभोपयोग का कार्य है। किसका कार्य है शुभोपयोग? शुद्धोपयोग शुभोपयोग का कार्य है। और शुभोपयोग किसका कार्य है? अशुभोपयोग का कार्य है। लेकिन वह अशुभोपयोग कौन सा अशुभोपयोग? तरल वाला या गाढ़ा वाला? मंद वाला। तरल तरल है ना, मंद, जिसमें गाढ़ापन है, उससे सम्यक दर्शन नहीं होगा। वो अशुभोपयोग असमर्थ कारण है। सम्यक दर्शन की उत्पत्ति में अशुभोपयोग ही कारण है, परंतु समर्थ कारण वो तरल वाला है, करण लब्धि वाला अशुभोपयोग, अंतिम क्षण में रहने वाला, वहां तक अशुभोपयोग है। वो उसमें विशुद्धि है, वो विशुद्धि कारण है, वो विशुद्धि अशुभोपयोग के साथ है, और वो हमको सम्यक दर्शन कार्य सिद्धि में कारण बन करके वो सम्यक दर्शन को दिला देता है, चौथे गुणस्थान को दिला देता है, स्वयं अलग हो जाता है, करण लब्धि अलग हो जाती है, वह विशुद्धि भी अलग हो जाती है जिसने सम्यक दर्शन को दिला दिया। वो विशुद्धि भी कारण है और उसके पश्चात की जो विशुद्धि है सम्यक दर्शन उत्पन्न होने के बाद रहेगी उत्तर क्षण में, वो उत्तर क्षण की विशुद्धि कार्य है और उसके पूर्व क्षण की विशुद्धि कारण है। तो ऐसे कारण कार्य की व्यवस्था न्याय क्षेत्र में बिठा करके श्रुत ज्ञान से हम चिंतनशील बनेंगे तो हमारी आत्मा का ज्ञानोपयोग की शक्ति का प्रवाह विशुद्धि और बढ़ेगी, निर्मलता और बढ़ेगी। प्रश्न उत्पन्न होने के बाद उसके पास उत्तर होना चाहिए, श्रुत ज्ञान के पास। हम प्रश्न पूछते आपसे, किससे पूछ रहे हैं? आपके श्रुत ज्ञानोपयोग से पूछ रहे हैं। आपका क्या चिंतन है इस बारे में, ऐसा पूछ रहे हैं ना? तो किस ज्ञान से पूछ रहे हैं? श्रुत ज्ञान। अब वो आपके पास चिंतन हो तो ही बताएंगे ना। अगर चिंतन वो तटस्थ हो गया तो आप उत्तर नहीं दे पाए तो क्या होगा? तो वहां तक आपका चिंतन था, इसके आगे बढ़ा नहीं, यही होगा ना। तो वहां तक आपका श्रुत ज्ञान तटस्थ रहता है, पर वहीं पर उसको बांध के रखोगे तो केवल ज्ञान की ओर कैसे बढ़ेगा? वो केवल ज्ञान की ओर नहीं बढ़ेगा। अपने उपयोग को बांधना नहीं, कभी भी स्वतंत्र रखना, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य को एक उपयोग दूसरे उपयोग को कुछ नहीं कर सकता। तो अपने उपयोग ही अपने लिए बाधक हो जाए तो कुछ तो कर रहा है अंदर तो उसको बांधना नहीं, उसकी चिंतन धारा को प्रवाहित कर दो, उसको उन्मत्त रख दो, जाने दो, प्रेशर बढ़ने मत दो, दीवार टूटेंगी। पानी अंदर भरेगा तो प्रेशर बढ़ेगा, दीवार टूट जाएंगे, ऐसे टूटने मत देना। फ्लो रखो उसको, यहां अशुभोपयोग में है तो उसको शुभोपयोग में जाने दो, शुभोपयोग में है तो शुद्धोपयोग में भी जाने दो, ऐसा जाते रहो। हाँ,
जब आप मंद अशुभ
हाँ
वहां जो मंद तर कह रहे हैं,
मंद मंदतर मंदतम
मंदतम वहां शुभोपयोग नहीं लगाएंगे?
नहीं, विशुद्धि है वहां, उस विशुद्धि को शुभोपयोग कहेंगे तो सम्यक दर्शन भी होने का प्रसंग आएगा, क्योंकि शुभोपयोग के साथ सम्यक दर्शन का अविनाभाव है। ये तो मान लिया, शुभोपयोग के साथ सम्यक दर्शन का अविनाभाव अगर माना तो फिर उमंदतम उस विशुद्धि को सम्यक दर्शन भी कहना पड़ेगा, जबकि वहां सम्यक दर्शन नहीं है, क्योंकि कारण मौजूद है, अभी कार्य सिद्धि नहीं हुई है, इसलिए शुभोपयोग के साथ तो विशुद्धि है ही, कार्य रूप विशुद्धि है।
पर वो जो मंद तरल बोल रहे हैं आप,
हाँ, अशुभोपयोग के साथ मंदतम जो अशुभोपयोग है और उसके साथ जोड़ी वाला जो विशुद्धि है वो विशुद्धि शुभोपयोग नहीं है। शुभोपयोग कार्य है, अभी कारण रूप है, ये कारण रूप अशुभोपयोग की विशुद्धि अशुभोपयोग ही है। उपयोग का अभाव हुआ है क्या अशुभोपयोग का? उस विशुद्धि के साथ जब मंदतम है वो, अशुभोपयोग का अभाव हुआ है क्या? तो उसी अशुभोपयोग के साथ जो विशुद्धि परम चरम सीमा पर पहुंची है और समर्थ कारण होकर के उपस्थित है, जो समर्थ कारण अब अगले क्षण में उत्तरवर्ती क्षण में सम्यक दर्शन की प्राप्ति में सहायक है, वो कारण रूप ही तो है, वो तो कारण रूप ही तो है। उस कारण रूप विशुद्धि को शुभोपयोग संज्ञा नहीं दे सकते, क्योंकि देंगे तो सम्यक दर्शन भी वही है, मानना पड़ेगा, मानना पड़ेगा। तो ऐसा होता है क्या? नहीं, तो इसमें बाधा आती है, इसलिए ऐसा न मान करके उसको अशुभोपयोग के साथ जो विशुद्धि है वह विशुद्धि सम्यक दर्शन की प्राप्ति में समर्थ कारण, और वह अशुभोपयोग भी सम्यक दर्शन की प्राप्ति में समर्थ कारण, इन दोनों को जब मानेंगे तो सारी शंकाओं का निरसन यहां हो जाएगा, व्यवस्था वस्तु व्यवस्था ठीक से बैठ जाएगी। सम्यक दर्शन प्राप्त उत्तर क्षण में सम्यक दर्शन भी आ गया, शुभोपयोग भी आ गया, और उसके साथ जो विशुद्धि जुड़ी वो कार्य रूप विशुद्धि इसकी अपेक्षा से कार्य रूप है, वो भी आ गया, तीनों एक साथ आ गए। सम्यक दर्शन आ गया, ये भी कार्य है, शुभोपयोग आ गया, ये भी कार्य है, और हाँ, और इसके साथ साथ विशुद्धि भी आए है, आ गई है, ये भी कार्य रूप विशुद्धि है, और इसके पहले जो विशुद्धि थी वो अशुभोपयोग के साथ थी, वो कारण रूप थी। ये इतना बैठ गया तो हो गया, कहीं भी शंका उत्पन्न नहीं होगी। इसी पर और हम सुनाएंगे कल विशुद्धि, आगे का विषय बहुत है अभी।
परम पूजनीय महाराज की जय। दो मिनट
नमस्कार, एक मिनट नमस्कार। परम पूज्य